कविताओं, कहानियों, गीतों, गजलों का नायाब ब्लॉग। लॉग ऑन करें www.hindyugm.com। हिंदी युग्म, अपनी बात अपनी भाषा में।
हिंदी युग्म की ओर से अमेरिका से मैं मृदुल कीर्ति कवि सम्मेलन के सभी श्रोताओं को नमन करती हूँ। पॉडकास्ट कवि सम्मेलन के चौथे अंक को प्रस्तुत करने में विशेष उत्साहित और ऊर्जस्वलित भी हूँ। तीसरे कवि सम्मेलन की समीक्षा और सराहना से हमें विशेष बल और साहस मिला है, प्रेरणा मिली है। सभी श्रोताओं को कविताएं और संचालन पसंद आया है, इसके लिए मैं पुनः साधुवाद देती हूँ। साथ ही सजग भी हूँ कि निंदा की दलदल में धंसते नहीं, प्रशंसा से जितने फिसलते कदम हैं, कुरुक्षेत्र इतिहास के पृष्ठ काले, कुटिलता के कारण भी केवल अहम है। काव्य, काव्य वस्तुतः जीवन की दुर्गम पहाड़ियों के बीच बहती हुई सुरम्य मंदाकिनी है, जिसके आचमन से मानसिक उत्कर्ष और भावनात्मक तृप्ति तो मिलती ही है, साथ ही प्रेरणा के ओज बिंदु भी संवेदित होते हैं। कुछ ऐसी कालजयी कृतियां हैं जो समय के हस्ताक्षर बन चुकी हैं। काव्य प्रेमियों के अंतस में कहीं ना कहीं वे बीज के रूप में समाई ही रहती हैं, और कितने ही प्रवासियों को ऐसी कालजयी कृतियों को सुनने का मन करता होगा। वैसे भी हम श्रुति परंपरा के वाहक हैं, वेद सुनकर ही हम तक पहुंचे हैं। यदि हम कहेंगे या सुनाएंगे नहीं तो नई पीढ़ी तक उसे कैसे पहुंचाएंगे। इसी कथन और श्रवण की परंपरा से कृतियों में प्राण प्रतिष्ठा होती है। इसी लक्ष्य को लेकर इस कवि सम्मेलन से हम एक नया अध्याय जोड़ रहे हैं। इस प्रकल्प में हम कालजयी कवि और कृतियों का संक्षिप्त विवरण हर माह सुन सकेंगे। तो आइए आपको काव्य के भावनात्मक जगत में ले चलते हैं और काव्य सम्मेलन की ओर उन्मुख होते हैं। आज सर्वप्रथम हमारे सम्मुख हैं अमेरिका से सौम्य लावण्या शाहजी। काव्य शक्ति इन्हें विरासत में मिली है। आप पंडित नरेंद्र शर्मा जी की पुत्री हैं लावण्या शाहजी, जो अदृश्य दृश्य रंगों के शीर्षक से हमें स्वप्न लोक में ले जा रही हैं। तो स्वप्न क्यों आते रहे थे रात भर, क्या तुम बुलाती पास अपने याद कर। लावण्या शाह जी आप आए, धन्यवाद।
ये कविता का है शीर्षक अदृश्य दृश्य रंगों के। स्वप्न क्यों आते रहे थे रात भर, क्या तुम बुलाती पास मुझको याद कर। सूने विजन में स्वप्न क्यों आते रहे थे रात भर, हार कर कोई अचानक आ गया, उचक डाली से सुमन वह ले गया। फिर स्वप्न क्यों आते रहे थे रात भर, मेरे मनस के दीप की ज्योति बनी। भर रागिनी के सुर रातों को सजी, फिर रागिनी बजती रही क्यों रात भर। मेरे नयन के नीर से हो शांत, षड रस प्रवाहित हो गए, पर स्वप्न क्यों आते रहे थे रात भर। मौन मुखरित स्वप्न सारे वो मेरे, श्याम धवल या की रंगारंग, ये स्वप्न क्यों आते रहे थे रात भर। थी रात वह कैसी भयानक, पास बैठी दूर जाने की कहानी तुम सुनाती। स्वप्न था कि सच छला जिसने रात भर, स्वप्न क्यों आते रहे थे रात भर। मुश्किलों का समय सारा ओ प्रिय, काट कर सम्मुख खड़ा हूँ आज भी। स्वप्न ज्योति स्वप्न तेरे आते रहे थे रात भर, स्वप्न क्यों आते रहे थे रात भर, स्वप्न क्यों आते रहे थे रात भर। शुक्रिया।
वास्तव में सपनों का अपना एक बृहत दर्शन है। यह सुषुप्ता अवस्था में हमारे चेतन और अवचेतन मन का दर्पण भी है। यजुर्वेद में एक मंत्रणा है, ओम यज्जाग्रत दूर मुदैति दैवम तदसुप्तस्य तथैवति दूरम गमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मेह मनाशिव संकल्पमस्तु। अर्थात हे परमेश प्रभु, सोते जागते और सुषुप्ति तीनों ही अवस्थाओं में हमारे मन शुभ संकल्पों वाले हों, यही शायद आज के युग की भी एक बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम सब के मन शुभ संकल्पी हों तो समाज का परिवेश ही बदल जाए। उसी ईश्वर की बनाई सृष्टि को शन्नो जी की दृष्टि से देखते हैं और आपसे उनका परिचय भी कराते हैं। शन्नो अग्रवाल जो लंदन से हैं, मूलतः वे भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत की हैं। प्रकृति से इनका विशेष लगाव रहा है, भावुकता इनकी निधि है, तो शब्द संयोजन इनकी क्षमता है और सजीव लेखन इनकी कुशलता है। नीरवता व्याप्त जैसे हो युगों की बंदनी, ऐसी पंक्ति काव्य सौंदर्य को उजागर करने के लिए पर्याप्त है। दूर घाटी के शीर्षक से वो प्रकृति का बड़ा ही सजीव चित्रण कर रही हैं। प्रकृति का इतना मधुरिम और सजीव सौंदर्य शन्नो जी ने अपनी लेखनी से उकेरा है, इनकी रचना में छायावाद की झलक है। मैं शन्नो जी से आग्रह करती हूँ कि वो अपने प्राकृतिक सौंदर्य जो उन्होंने अपने शब्दों से संजोए हैं वो हमें भी अनुभव कराएं। धन्यवाद। शन्नो जी, आप आए और अपने शब्दों से संजोए हुए प्राकृतिक सौंदर्य से हम सबको भी आप प्लावित करें। मैं आपका आह्वान करती हूँ शन्नो जी। शन्नो अग्रवाल लंदन से।
मैं हूँ शन्नो अग्रवाल और मुझे प्राकृतिक चीजों से बचपन से ही बहुत ही प्यार और लगाव रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कविता लिखी है जिसका शीर्षक है दूर घाटी में। दूर घाटी में मचल रही है कोई निर्झरा, शून्य नीला आकाश को निरख रही है चुप धरा। मुस्कुराती वादियां खिली खिली सी धूप में, स्वप्नमयी हो उठी हैं खोई अपने रूप में। ढल रहा है दिन मगर इन्हें तो होश ही नहीं, श्रृंग झिल मिला उठे हैं रश्मियां बिखर गईं। भाग रही धूप घिर रही है सांझ भी घनी, नीरवता व्याप्त जैसे हो युगों की बंदिनी। आंचल है फैल रहा धरती पे छांव का, पूछ रही रेशमी सी धूप पता गांव का। कांपती सी दिख रही हैं पंक्तियां चिनार की, ये झरे से फूल कह रहे कहानी हार की। महक उठे बौन बने जंगली कुछ फूलिए, शांत है समीर हो रहे बिहंग स्तब्ध से। झांक रहा है बिजन में व्योम भी भरा भरा, दूर घाटी में मचल रही है कोई निर्जरा। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है यादें विदाई की। जब एक लड़की अपना मायका छोड़कर अपने ससुराल जाती है या विदेश में रहती हुई लड़की जब कुछ हफ्ते या महीने रहती है भारत में, उसके बाद जब आती है इतना प्यार इतना अपनापन लिए हुए, वो दिन उसके लिए कितने भावुक होते हैं, उस पे मैंने ये कविता लिखी है। वो अपनापन वो चहल पहल और प्यार भरी वो अंगनाई, समय और दिन सब बीत गए और छोड़ सभी को मैं आई। मन भर ना पाया तुम सबसे मिलके और फिर बातें करके, कितनी भी बातें कर कर ली फिर भी हम सब थे ना थकते। अब यादें सजीव रखती हैं हर पल में मिला जो अपनापन, तुम सबकी छवि बसाए हैं मेरे मन अंतर का दर्पण। कितने अनमोल अनोखे हो ना किया किसी ने कभी गुमान, मेरी यादों में तुम सब हो और वो घर जहां मिला है मान। जब यादों के मेघ उमड़ते हैं तब तब पलकें हो जाती नम, जब आंखों को मूंदो तो लगता सब पास पास बैठे हैं हम।
यादें विदाई की शीर्षक से शन्नो जी की ये रचना बहुत ही हृदय स्पर्शी लगी। वो अपनापन और चहल पहल और प्यार भरी वो गनाई मन को छू गई। बेटी की मायके के प्रति लगाव की तुलना किसी भी लगाव से नहीं की जा सकती। उसे तो अपने घर के आंगन में लगे हुए किसी भी वृक्ष की छांव और सूरज की रोशनी से छन कर आते हुए पत्तों का कंपन तक याद रहता है। भले ही वो पेड़ कट गया हो, भले ही वो आंगन भाइयों में बट गया हो, वो अपनी यादों की पिटारी और अपनी गुड़िया किसी को नहीं देती। इसी भाव को लेकर मैं बहुत अच्छी एक रचना आपको सुनवाने जा रही हूँ, फरीदाबाद से शोभा महेंद्र जी, यादों की पिटारी शीर्षक से स्मृतियों के मोती हमारे साथ बांटना चाहती हैं और उनके इन भावनात्मक मोतियों का हम बहुत ही हृदय से उनकी भावनाओं का आदर करते हैं और यादों की पिटारी शीर्षक से उनकी कविता का स्वागत करते हैं और उनका भी आह्वान करते हैं कि वो आए अपनी रचना सुनाएं। शोभा महेंद्र जी भारत से फरीदाबाद से, धन्यवाद।
नमस्कार। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बहुत सी यादें होती हैं। कुछ ऐसी यादें होती हैं जो व्यक्ति को आनंद के सागर में डुबो देती हैं, किंतु कुछ ऐसी यादें भी होती हैं जो कांटों के समान चुभती हैं। मैंने भी अपने जीवन की यादों को एक गीत में संजोया है, प्रस्तुत कर रही हूँ। खोल कर जो बैठी रात यादों की पिटारी, बिखर गए मोती सारे, आंख हुई भारी, कसक सी जगी दिल में अपने से थी हारी। कैसे कहूँ रात जो गुजारी, खोल कर जो बैठी रात। पहला मोती बचपन की यादें लेके आया, आंगन में सोई थी जो गुड़िये उठा लाया, माँ बाबा संगी साथी सामने जो आए, जाग उठी लाख यादें होठ मुस्कुराए। ले जाओ बचपन ये बिटिया मेरी प्यारी, बिखर गए मोती सारे, आंख हुई भारी, खोल कर जो बैठी रात। तू जा मोती प्रीत का था सामने जो आया, किरण जाल सपनों का उसने था बिछाया, दूजा मोती प्रेम का था सामने जो आया, किरण जाल सपनों का उसने था बिछाया। पीहू की पुकारों ने शोर सा मचाया, प्रेम बीन बजने लगे, जादू सा था छाया। कानों में आ बोला कोई आ जाओ प्यारी, बिखर गए मोती सारे, आंख हुई भारी, खोल कर जो बैठी रात। अंतिम है। एक एक मोती ने यादें सौ जगाई, एक एक मोती ने यादें सौ जगाई, बिखरी सी मंजुषा संभाल भी न पाई। पागल दीवानी हो उनके पीछे धाई, बिखरे मोती बीती बातें हाथ में न आई। यादों की जमीन पर था एक पग भी भारी, बिखर गए मोती सारे, आंख हुई भारी, कसक सी जगी दिल में अपने से थी हारी। कैसे कहूँ रात जो गुजारी, खोल कर जो बैठी रात। धन्यवाद।
अभी आपने शोभा महेंद्र जी से यादों की पिटारी शीर्षक से इतनी भावनात्मक रचना सुनी। एक एक मोती ने यादें सौ जगाई, यादों की जमीन पर था एक पग भी भारी। वैसे जिंदगी एक मरुस्थली है और एक बहुत ही कठिन यात्रा है, इसमें कितने ही उतार चढ़ाव आते हैं। धूप का अविरल पसारा, एक चुटकी छांव है, बादली सुख एक क्षण का, दर्द का एक गांव है। जिंदगी कुछ भी नहीं है धुंध कोहरे के सिवा, कामनाओं का मरुस्थल और बबूली ठाउं है। तो अगर जीवन की मीमांसा में गहराई में उतरते हैं तो बहुत सारे दर्शन उतर कर आते हैं। उन्हीं का एक पृष्ठ आगे डॉक्टर रमा द्विवेदी जी भारत से, हैदराबाद से, एक पृष्ठ उसी दर्शन का और खोलती हैं और हम उसको पढ़ने जा रहे हैं और हम उनका आवाहन करते हैं। डॉक्टर रमा द्विवेदी जी, क्या बात अब तुझसे करूं, कहने को तो हम साथ थे पर सांस में थी दूरियां, बनवास एक कमरे में था, थी दिल की कुछ मजबूरियां। उनके इस गे गीत को उन्हीं से सुनते हैं, शीर्षक है क्या बात अब तुझसे करूं।
क्या बात अब तुझसे कहूं, क्या बात अब तुझसे कहूं, हर ख्वाब तन्हा रह गए, जो बात हम ना कह सके वो अश्रु बन कर बह गए। क्या बात अब तुझसे करूं, हर ख्वाब तन्हा रह गए, जो बात हम ना कह सके वो अश्रु बन कर बह गए। प्रणय के इस अनुबंध को एक बार भी ना गुन सके, प्रणय के इस अनुबंध को एक बार भी ना गुन सके, जीनी चदरिया प्रेम की एक तार भी ना बुन सके, जीनी चदरिया प्रेम की कितार भी ना बुन सके। एहसास बन गए कफन, एहसास बन गए कफन, तन से लिपट कर रह गए, जो बात हम ना कह सके वो अश्रु बन कर बह गए। क्या बात अब तुझसे करूं, हर ख्वाब तन्हा रह गए, जो बात हम ना कह सके वो अश्रु बन कर बह गए। कहने को तो हम साथ थे, कहने को तो हम साथ थे पर सांसों में थी दूरियां, वनवास एक कमरे में था, थी दिल की कुछ मजबूरियां। कहने को तो हम साथ थे पर सांसों में थी दूरियां, वनवास एक कमरे में था, थी दिल की कुछ मजबूरियां। मैं सरिता बन बहती रही, मैं सरिता बन बहती रही, तुम कूल बन कर रह गए, जो बात हम ना कह सके वो अश्रु बन कर बह गए। क्या बात अब तुझसे करूं, हर ख्वाब तन्हा रह गए, जो बात हम ना कह सके वो अश्रु बन कर बह गए। कुछ चाहते अपनी अधिक थी या हमारी, भूल दी, कुछ चाहते अपनी अधिकती या हमारी भूल दी, कैक्टस के संग गुलाब था बस हर घड़ी एक सूल थी, कैक्टस के संग गुलाब था बस हर घड़ी एक सूल थी, हर पल लहू लुहान थे, हर पल लहू लुहान थे, ये दर्द भी हम सह गए, जो बात हम ना कह सके वो अश्रु बन कर बह गए, क्या बात अब तुझसे करूं, हर ख्वाब तन्हा रह गए, जो बात हम ना कह सके वो अश्रु बन कर बह गए, उम्मीद थी कि रोज तुम हमको समझ कुछ पाओगे, उम्मीद थी कि रोज तुम हमको समझ कुछ पाओगे, खुद के अहम को त्याग कर दिल से हमें अपनाओगी, बस एक सी उम्मीद में, बस एक सी उम्मीद में दिन रात दिन गुजर गए, जो बात हम कह सके वो अश्रु बन कर बह गए, बस एक सी उम्मीद में, बस एक सी उम्मीद में दिन रात दिन गुजर गए, जो बात हम ना कह सके वो अश्रु बन कर बह गए, क्या बात अब तुझसे करूं, हर ख्वाब तन्हा रह गई, जो बात हम ना कह सके वो अश्रु बन कर बह गए, जो बात हम ना कर सके वो अश्रु बन कर बह गई।
यह एक बड़ा कटु सत्य है कि ऐसे दुख को सह पाना बड़ा कठिन होता है। जब मन टूटता है तो दिखता तो कुछ नहीं है, पर हो सब कुछ जाता है। क्यों नहीं लोग चिंतन की दिशा बदल लेते हैं, एक बार संकल्पित होकर निश्चल स्नेह सीख अविराम, फटी हुई छतरी वर्षा में आधी आधी ओढ़ेंगे, स्नेह घरौंदा मुस्कानों से ईंट ईंट कर जोड़ेंगे, ऐसे ही घर में रमता है राम रमैया रघुवर राम, और एक बार संकल्पित होकर निश्चल स्नेह सीख अविराम। जीवन के इसी सापेक्ष पक्ष से आपका परिचय करा रहे हैं भारत के महेंद्र भटनागर जी, जो झांसी उत्तर प्रदेश प्रांत से हैं। आपका परिचय काव्य के गौरवमयी प्रश्नों को खोलने के बराबर है। आप एक वरिष्ठ और प्रतिष्ठित कवि हैं, अपनी रचनाओं में जीवन के सभी पहलुओं को छुआ है। आपके लिखे हुए 20 काव्य संग्रह हैं, जिसमें समय को 6 खंडों में प्रकाशित किया गया है, और आपकी रचनाओं का अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है। उनकी वरिष्ठता का हम सम्मान करते हैं और सादर आमंत्रण प्रेषित करते हैं। उनकी जीवन के प्रति आशावादी विचारधारा प्रसन्नता का उद्गम स्रोत है, यही सापेक्ष भाव आनंद का मूल है। आइए श्री महेंद्र भटनागर जी झांसी उत्तर प्रदेश प्रांत से उनकी रचना सुनते हैं। कितने भावनात्मक रूप में वो कह रहे हैं कि आ गए हंसते हुए, अब दर्द सब बह जाएंगे, अब न जाना फिर कभी हम शून्य से रह जाएंगे।
कविता का शीर्षक है राग संवेदन। तुम बजाओ साज दिल का, जिंदगी का गीत मैं गाऊं, तुम बजाओ साज दिल का, जिंदगी का गीत मैं गाऊं, तुम बजाओ साज दिल का, जिंदगी का गीत मैं गाऊं, उम्र यों ढलती रहे, उम्र यों ढलती रहे, उर में धड़कती सांस यह चलती रहे, दोनों हृदय में स्नेह की बाती लहर बलती रहे। जीवंत प्राणों में परस्पर भावना संवेदना पलती रहे, उम्र यों ढलती रहे, उर में धड़कती सांस यह चलती रहे, दोनों हृदय में स्नेह की बाती लहर बलती रहे। जीवंत प्राणों में परस्पर भावना संवेदना पलती रहे। तुम सुनाओ एक कहानी प्यार की मोहक, तुम सुनाओ एक कहानी प्यार की मोहक, सुन जिसे मैं चैन से कुछ क्षण किसो जाऊं। तुम सुनाओ एक कहानी प्यार की मोहक, सुन जिसे मैं चैन से कुछ क्षण किसो जाऊं। दर्द सारा भूल कर, दर्द सारा भूल कर, मद स्वप्न में बेफिक्र खो जाऊं। तुम सुनाओ एक कहानी प्यार की मोहक, सुन जिसे मैं चैन से कुछ क्षण किसो जाऊं। दर्द सारा भूल कर मद स्वप्न में बेफिक्र खो जाऊं। तुम बजाओ साज दिल का और जिंदगी का गीत में गाऊं। तुम बहाओ प्यार जल की छल छलाती धार, तुम बहाओ प्यार जल की छल छलाती धार, और चरणों पर तुम्हारे स्वर्ग वैभव मैं झुका लाऊं। तुम बहाओ प्यार जल की छल छलाती धार, चरणों पर तुम्हारे स्वर्ग वैभव मैं झुका लाऊं। तुम बजाओ साज दिल का, तुम बजाओ साज दिल का, और जिंदगी का गीत मैं गाऊं। तुम बजाओ साज दिल का, और जिंदगी का गीत मैं गाऊं।
आपके आशावादी विचार सराहनीय हैं। सच में साथी का सच्चा साथ एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। आ गए हंसते हुए, अब दर्द सब बह जाएंगे, अब न जाना फिर कभी हम शून्य से रह जाएंगे। शून्य का अंकन तभी हो, अंक का जब साथ हो, मेरा मूल्यांकन तभी हो, हाथ में जब हाथ हो। तुम नहीं तो शून्य से घट शून्य ही रह जाएंगे, अब न जाना फिर कभी हम शून्य से रह जाएंगे। मेरे भी भाव छलकन छलकन तक आकर छलक ही जाते हैं। श्रोता या तो मुझे क्षमा करेंगे या आनंद लेंगे। यही प्रेम जब संकीर्णता से विराट होने की ओर चलता है तो उसकी चित्त वृत्ति आध्यात्म से जुड़ जाती है। इन्हीं विचारों की ओर काव्य की धारा को मोड़ रहे हैं श्री अमिताभ मीत जी, जो कलकत्ता से हैं। जरा देख सखी शीर्षक से अपने भाव हमें अभिव्यंजित कर रहे हैं। सूफी संतों के दर्शन की और आध्यात्म की झलक हमें इनकी इस रचना में मिलती है। जरा देख सखी, अब उनके दर्शन का आनंद लेते हैं के भावों की अभिव्यक्ति। अमिताभ जी आए, आप अपने विचारों को व्यक्त करें। धन्यवाद।
सखी मोहे देख सखी, मोहे देख सखी, इन आँखों में एक सूरत तेरी बसती है। मोहे देख सखी, इन आँखों में एक सूरत तेरी बसती है। कभी देखा नहीं इनने तुमको, कभी देखा नहीं इनने तुमको, बस मूरत तेरी बसती है। मोहे देख सखी, इन आँखों में एक सूरत तेरी बसती है, कभी देखा नहीं इनने तुमको, बस मूरत तेरी बसती है, कभी देख सके कि नहीं तुमको, इस सोच में डूबी रहती है, कभी देख सके कि नहीं तुमको, इस सोच में डूबी रहती हैं, कोई सपन संजोती हैं बिरहन, कोई सपन संजोती हैं बिरहन, अब सपनन ही में ये बसती हैं, कभी सोचें ये कैसा बंधन है और कहां बंधा था क्या जाने, कभी सोचें ये कैसा बंधन है और कहां बंधा था क्या जाने, इन झगड़ों से इन्हें क्या लेना, ये तो पी की आस में सजती हैं, कभी सोचें ये कैसा बंधन है और कहां बंधा था क्या जाने, इन झगड़ों से इन्हें क्या लेना, ये तो पी की आस में सजती हैं, कभी ऊदी सी भी रहती हैं, कभी ऊदी सी भी रहती हैं, पर दुख में नहीं मैं जानू हूं, कभी ऊदी सी भी रहती हैं, पर दुख में नहीं मैं जानू हूं, किस पी की आस में गीली हैं, किस पी की आस में गीली हैं, किस साजन को ये तरसती हैं, कभी ऊदी सी भी रहती हैं, पर दुख में नहीं मैं जानू हूं, किस पी की आस में गीली हैं, किस साजन को ये तरसती हैं, मेरी मान सखी अब दरस दिखा, मेरी मान सखी अब दरस दिखा, क्या इनको सता तू पाती है, मेरी मान सखी अब दरस दिखा, क्या इनको सता तू पाती है, तू तो इनमें बसी थी जन्मों से, दिन रात तुझी को तकती हैं, सखी कैसा नाता है ये भला, सखी कैसा नाता है ये भला, इन्हें तू ही बता ये भोली हैं, सखी कैसा नाता है ये भला, इन्हें तू ही बता ये भोली हैं, क्या तुझको पता है ये भेद सखी, क्या तुझको पता है ये भेद सखी, ये कैसे तुम्हारी होली हैं, सखी कैसा नाता है ये भला, इन्हें तू ही बता ये भोली हैं, क्या तुझको पता है ये भेद सखी, ये कैसे तुम्हारी होली हैं।
कवियों के संदर्भ में अनुराग शर्मा जी का आपसे परिचय कराती हूँ। अनुराग शर्मा अमेरिका से पिट्सबर्ग से हैं। ये सटीक लिखते हैं, छोटा सा लिखते हैं, यथार्थ को छूकर एकदम चुप हो जाते हैं। भूमिकाओं में इनका विश्वास नहीं, सीधे सत्य पर आ जाते हैं। इनके परिचय में एक और भी छवि है कि इनके ही तकनीकी सहयोग से कवि सम्मेलन पनप रहा है, इसके लिए साधुवाद ग्रहण करें। वो एक तरह से कह सकते हैं ये छड़िकाएं ज्यादा लिखते हैं। सत्यमेव जयते सच तन कर चलते रहना है, जब झूठ फिसलता होता है। आइए सुनते हैं अनुराग शर्मा जी पिट्सबर्ग से।
सच कड़वा है कहने वाले, क्या जाने सच क्या होता है, सच मीठा भी हो सकता है, क्या जाने जो बस रोता है, सच तनकर चलते रहना है, जब झूठ फिसलता होता है, सच वैतरणी भी तरता है, जहां झूठ लगाता गोता है। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है अश्रु। नहीं बहाता अश्रु गरल पी जाता, तुम होते तो मैं जीवन जी जाता, जीवन कैसा होता है यह तुमने कभी बताया था, जग से हारे हुए किसी को तुमने कभी जिताया था, जागृत कर मुझको चिर निद्रा क्यों सोए, राह दिखाकर मुझे अजाने पथ क्यों खोए, याद तुम्हारी मुझको जकड़े हुए खड़ी है, तुम होते तो शायद आगे बढ़ भी जाता, नहीं बहाता अश्रु गरल पी जाता, तुम होते तो मैं जीवन जी जाता।
सत्यमेव जयते की शाश्वती से दूर जाता इंसान कैसे कभी हृदय को आंदोलित करता है, आज के बदलते समय में बदलते अस्तित्व का संतरास व्यक्त कर रहे हैं श्री विवेक मिश्रा जी भारत से। दिल्ली से विवेक मिश्रा जी अस्तित्व के छोटे होते हुए स्वरूप को कितनी बेवशता से निरख रहे हैं, ये उनकी बड़ी ही सार गर्भित रचना है अस्तित्व। सुनते हैं
एक छोटी सी कविता, आज के बदलते समय में बदलते अस्तित्वों की कविता। शीर्षक है अस्तित्व। मैं निरंतर अस्तित्व खोता जा रहा हूँ, मैं छोटा और छोटा होता जा रहा हूँ। कि मैं निरंतर अस्तित्व खोता जा रहा हूँ, मैं छोटा और छोटा होता जा रहा हूँ। अपने क्रोध को संतरास को यूं दबाकर मैं खुद अपना रूप बदला पा रहा हूँ। मैं निरंतर अस्तित्व खोता जा रहा हूँ। कि दर्पण भी हैरान है छाया मेरी देखकर, मैं नित नए आकार लेता जा रहा हूँ। मैं निरंतर अस्तित्व खोता जा रहा हूँ। कि चुक गई संवेदना मेरे भीतर, अब बचा कुछ भी नहीं। जो बचा बाहर कहीं, वह भी मुझको खा रहा है, मैं भी उसको खा रहा हूँ। मैं निरंतर अस्तित्व खोता जा रहा हूँ। मैं छोटा और छोटा होता जा रहा हूँ, और छोटा होता जा रहा हूँ।
विवेक मिश्रा जी, मानवीय मूल्यों के घटते हुए स्वरूप की आपकी संवेदना और पीड़ा आपकी रचना से हम तक पहुंची है। हम विशेष होने की जगह शेष होते जा रहे हैं, श्रेष्ठ से साधारण होते जा रहे हैं, साधारण होने की व्यथा को उजागर कर रहे हैं। श्री श्याम सखा श्याम जी जो रोहतक शहर से हैं, साधारण की व्यथा शीर्षक से साधारण का भी अपना आत्मसम्मान और स्थान होता है। हे श्रेय की दूरी को स्वस्थ चिंतन से पाटना ही होगा, विवेक और व्यवहार से हमें सबको मान्यता देना होगा।
मित्रों, मैं श्याम सखा श्याम रोहतक हरियाणा से आपको अपनी कविता साधारण की व्यथा सुनाने जा रहा। चुपचाप जो रहते हैं वे भी तो कुछ कहते हैं, चुपचाप जो रहते हैं वे भी तो कुछ कहते हैं। योगदान उनका क्या गांव है, फिर इतिहास उनके बारे में क्यों मांग। क्या बस राधा थी जो कृष्ण का आधा थी, क्या बस राधा थी जो कृष्ण का आधा थी। श्याम की और भी तो रानियां हैं, उनकी कहाँ कहानियां हैं। फिर गोप गोपियां कहाँ जाएंगी, अपना अधिकार किससे पाएंगी। बिन गोप गोपियों के रास रच जाती, कान्हा तेरे बचपन की कोई बात बच पाती। जब स्थान पूतना को भी उचित मिल जाता है, जब स्थान पूतना को भी उचित मिल जाता है, तो अपना साधारण होना मुझे खल जाता है, अपना साधारण होना मुझे खल जाता है। अपना रंग जमाने की खातिर कुब्जा को भी ले आते हैं, अपना रंग जमाने की खातिर कुब्जा को भी ले आते हैं। ये कैसे लेखक हैं, जन साधारण को नहीं गाते। बस विशेष शेष रह जाता है, साधारण तो बनता है अवशेष, ढह जाता है समय की नद में बह जाता है। मंथरा ताड़ का स्वरूप नखा, सब कहीं न कहीं अलग होकर देती दंस रही। सीता जन्मी धरा से, धरा में धंस रही। मंथरा ताड़ का स्वरूप नखा, सब कहीं न कहीं अलग होकर देती दंस रही। सीता जन्मी धरा से, धरा में धंस रही। यूं कहने को रामायण में शबरी भी आई, यूं कहने को रामायण में शबरी भी आई है, पर इसी बहाने लेखक ने फिर राम की महिमा गाई है। अहिल्ला का पत्थर होना आया लेखक को रास था, वरना उर्मिला भक्त संगिनी शत्रुघ्न भारिया और अनेकों के बारे में कहने का उसे कहाँ अवकाश। जामवंत दधीची याहो हिडम्बा, जामवंत दधीची याहो हिडम्बा, चाहे हो मल्लाह की बेटी मत्स्यगंधा। विशेषता आवश्यक है, सुन अम्बालिका सुन अम्बा। एकलव्य ने साधारण होकर सर ऊपर उठाया था, एकलव्य ने साधारण होकर सर ऊपर उठाया था, इसी एवज में अपना अंगूठा कटवाया था। क्या इंद्रप्रस्थ में द्रौपदी एकमात्र नारी थी, क्या इंद्रप्रस्थ में द्रौपदी एकमात्र नारी थी जो पड़ी सभी स्त्री पुरुषों पर भारी थी। हतभागिनी आंसू पीकर जीने वाली दुर्योधन की पत्नी का जिक्र कहां है। हतभागिनी आंसू पीकर जीने वाली दुर्योधन की पत्नी का जिक्र कहाँ है। आंसू पोंछे उसके इतिहास को फिक्र कहाँ है। मैं भी कहाँ सबके बारे में कह पाऊंगा, मैं भी कहाँ सबके बारे में कह पाऊंगा। कहना भी चाहूंगा तो सुनने वाले कहाँ पाऊंगा। मित्रों, अक्षर भी जब तक साधारण रहते हैं, मित्रों अक्षर भी जब तक साधारण रहते हैं, पड़े रहते हैं, चुपचाप वर्णमाला में जड़े रहते हैं, फिर कभी इसका कभी उसका साथ पाकर शब्द बनते हैं, इठलाते हैं, सुघड़ लेखक के हाथ आकर कहानी कविता गजल में ढल जाते हैं, सुंदर अति सुंदर अति सुंदर कहलाते हैं, अति सुंदर कहलाते हैं।
साधारण होते होते क्या इतने साधारण हो गए हैं कि रोटी कपड़ा और जीवन की आवश्यक सामग्री भी नसीब ना हो। उस समय खोती हुई संवेदनाओं से आहत मन व्यथित होकर पूछता है, हे ईश्वर, क्या हम तेरी औलाद नहीं है? हम तेरी औलाद शीर्षक से नीरा राजपाल कनाडा से एक बहुत ही संवेदनशील रचना से हमें संवेदित कर रही हैं। उनके मानवीय संवेदनाओं के प्रति हमारा विशेष भावनात्मक नमन है और मुझे उनकी ये रचना अच्छी लगी। इस समय वे कनाडा में हैं, लेकिन मूलतः वे मुंबई से हैं। हम तेरी औलाद।
हम तेरी औलाद, हम तेरी औलाद करते हैं फरियाद, सब परिवार के साथ हैं, हम क्यों अनाथ हैं? कभी कुदरत ने तो कभी इंसान ने हर ओर तबाही मचाई है। कहीं पर भूकंप आया तो कहीं पर नदियों में बाढ़ आई है। किसी ने सांप्रदायिक उन्माद पढ़ाया तो किसी ने बारूदी आतंक फैलाया। धरती फटी, घर टूटे, अपनों से अपने छूटे, बचा न कोई साथ, हम हो गए अनाथ। हम भी पढ़ना चाहते हैं, डॉक्टर वकील या इंजीनियर बनना चाहते हैं, रोटी कपड़ा छत की हमारी भी है इच्छा, फिर क्यों लेते हो हमारी कठिन परीक्षा? किसके आगे फैलाए हाथ, किसे झुकाए माथ, कौन है जो करे रखेगा सर पर हाथ? माँ की ममता, बाबा का दुलार, भाई बहन का प्यार, पाने को हम हैं बेकरार। भेड़ों की तरह है हाल हमारा, सब करते हैं किनारा, नहीं देता कोई सहारा, मैले और पटे कपड़ों से ढकते हैं तन, सहते हैं गर्मी और ठिठुरन, हम नहीं रह पाते कभी सुकून से, क्यों आज महंगा है पानी भी खून से? सहकर सूरज की धूप और पेट की भूख, शरीर गया है सूख, मत करो दिल पर आघात, हम नहीं औलाद, हम तेरी औलाद करते हैं फरियाद।
कमलप्रीत जी भारत गाजियाबाद से हैं और इन्होंने पगडंडियां और निराशा से दो शीर्षकों के अंतर्गत बड़ी सारगर्भित रचनाएं लिखी हैं। जीवन की दुरूहताओं में नई राहें बनाने को संकल्पित हैं। जिन्होंने पहले डग भरे हैं, कांटे तो उन्हीं को चुभे हैं। पगडंडियां यूं ही नहीं बन जाती, कोई तो संकल्पी पहले चला होगा। हम भी कमलप्रीत जी के साथ नई मंजिलों की खोज में इन्हीं पगडंडियों पर चलते हैं। कमलप्रीत जी,
कविता का शीर्षक है पगडंडियां। जिंदगी की ऊबड़ खाबड़ जमीन पर अनिश्चित सी बल खाती पगडंडियां, कभी किसी के रोमांच और प्रयासों की मात्र पदचिन्ह रही होंगी और आज एक दिशा निर्देश का प्रतीक बन चुकी हैं, जो आने वाले कल के लिए सुदृढ़ मार्ग सुनिश्चित कर रही हैं। कल होने वाली मार्ग प्रशस्ति का श्रेय उस स्फूर्ति, उस साहस को है जो कांटों भरे प्रदेश में एक नई राह की खोज मन में लिए, चाह जगाए निरंतर अपने जीवन के अर्थ और सार्थकता पगडंडियों में ढूंढती रही है। नमन है उस अदम्य प्रयास को जो सदा निराशा के बीहड़ों में भी छंटती आशा की किरणें देखता रहा लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। निराशा से, निराशा तुम मेरी आशा के दीप, निराशा तुम मेरी आशा के दीप, यह जग रीता रीत तुम्हारी सांसों का संगीत, निराशा तुम मेरी आशा के दीप, निराशा तुम मेरे श्वासों के क्षण, निराशा तुम मेरे श्वासों के क्षण, आशा के पूरक पूरित प्रतिपण, निराशा तुम मेरे क्रिया पद चिन्ह, निराशा तुम मेरे क्रिया पद चिन्ह, चित रहा जब तब यूं खिन्न और सभी आश्वासन भिन्न, निराशा तुम मेरे भ्रमों के अंत, निराशा तुम मेरे भ्रमों के अंत, करना है कर कार्य अनंत, तभी जीऊं जीवन पर्यंत, निराशा तुम मेरी आशा के दीप, यह जग रीता रीत तुम्हारी सांसों का संगीत, निराशा तुम मेरी आशा के दीप। धन्यवाद।
वैसे तो जीवन सुख दुख का मिला जुला नाम है, कभी धूप कभी छांव है, यही इसका स्वभाव है। देखा जाए तो सबसे बड़ी धोखेबाज जिंदगी ही होती है, कब साथ छोड़ दे किसे पता है। सुख सुविधा जीवन यापन का जब तक हम सामान बनाते, खो जाते मधुरिम क्षण इनमें, जीवन दूर निकल जाता है, हाथ नहीं कुछ भी आता है। अपने जीवन के बसंत सब महकाने में बाग लग गए, और बाग देखने का जी चाहा, लगा कहीं हम बहुत थक गए। मन सुगंध को छू पाने का उपक्रम करते रह जाता है, हाथ नहीं कुछ भी आता है। जिंदगी की इस सच्चाई को एक आईना मानकर प्रदीप मनोरिया जी हमें जिंदगी एक आईना इस शीर्षक से एक बहुत अच्छी गजल सुना रहे हैं, श्री प्रदीप मनोरिया जी।
दोस्तों, अशोक नगर से प्रदीप मनोरिया का नमस्कार। कविता का शीर्षक है जिंदगी एक आईना। कि रंजो गम के आईने सी हो गई है जिंदगी, रंजो गम के आईने सी हो गई है जिंदगी, दर्द के एहसास की तस्वीर है ये जिंदगी। रंजो गम के आईने सी हो गई है जिंदगी, दर्द के एहसास की तस्वीर है ये जिंदगी। बेरुखी तेरी कहे कि भूल जाएं अब तुझे, बेरुखी तेरी कहे कि भूल जाएं अब तुझे, तेरी यादों का अरे दरिया रही ये जिंदगी। रंजो गम के आईने सी हो गई है जिंदगी। रुख हंसी की मुस्कुराहट थे उजाले जो कभी, रुख हंसी की मुस्कुराहट थे उजाले जो कभी, दीद उस रुख को तरसते शाह है अब जिंदगी। रंजो गम के आईने सी हो गई है जिंदगी। इम्तहा ये जिंदगी का हो भले कितना कठिन, इम्तहा ये जिंदगी का हो भले कितना कठिन, दिल से हूँ मजबूर में कैसे कटेगी जिंदगी, दिल से हूँ मजबूर में कैसे कटेगी जिंदगी। रंजो गम के आईने सी हो गई है जिंदगी। राह में मिलकर भी वो नजरें घुमाकर चल दिए, राह में मिलकर भी वो नजरें घुमाकर चल दिए, बावफा वो हो सही, बावफा वो हो सही, पर बेवफा है जिंदगी। रंजो गम के आईने सी हो गई है जिंदगी, दर्द के एहसास की तस्वीर है ये जिंदगी। लेके दिल वापस दिया टूटा खिलौना रह गया, लेके दिल वापस दिया टूटा खिलौना रह गया, खेल ये आसान सा मुश्किल हुई ये जिंदगी। रंजो गम के आईने सी हो गई है जिंदगी, दर्द के एहसास की तस्वीर है ये जिंदगी, दर्द के एहसास की तस्वीर है ये जिंदगी। धन्यवाद।
भारत के बहुत ही आध्यात्मिक केंद्र और विख्यात शहर वाराणसी से शीला सिंह जी, तुम भूल गए शीर्षक से अपने बड़े आंतरिक मनोभावों को प्रकट कर रही हैं। वाक जालों से तुम्हें छलने में मेरा विश्वास नहीं, तुम स्वयं को पहचान सको यही मेरा लक्ष्य है, इसीलिए उपमाओं के बंधन मैंने तोड़े। मुझे सादा सा निश्चल मानव सौम्य निष्प्रह एक विमल व्यक्तित्व चाहिए। सादा सा निश्चल मानव मेरे मन की खोज का लक्ष्य है। इसीलिए मैंने तुम्हें व्यर्थ के अलंकरणों से नहीं सजाया और तुम एक निरपेक्ष और सत्य रूप में मेरे सामने उजागर हो, यही मेरा लक्ष्य था। इसीलिए मैंने तुम्हें अलंकारों से नहीं सजाया, व्यर्थ के उपमान और उपमाओं से मैं तुम्हें दूर ले जाना चाहती थी। अच्छी रचना है। शीला सिंह जी वाराणसी से।
तुम भूल गए, मैंने तुम्हें उपमाओं और उपमानों का हार कभी नहीं पहनाया, शायद इसलिए तुम भूल गए। मैं तुम्हारे नाम के साथ चढ़ा सकती थी झूठ का मुलम्मा, तब क्या तुम स्वयं को पहचान पाते? सत्य चिर सत्य एक सा बना रहता है, इसलिए झूठी परंपराओं के दाग मैंने श्वेत वस्त्रों पर कभी नहीं लगाए। तुम स्वयं को पहचान गए क्यों? प्रस्तुतिकरण क्योंकि सरल था। तुम ढूंढ पाओ स्वयं को, शायद इसके लिए मैंने अनेक बंध तोड़े थे उपमाओं के। उपमाओं एवं रूपकों के बीच अस्तित्व तुम्हारा घुटने लगा था। बड़े बड़े शब्दों के जाल से निकाला था तुमको मैंने, शायद इसलिए तुम स्वयं को पहचान गए, क्योंकि वाक जालों से मैंने तुम्हें कभी छला न था। पहचान के स्वयं के अहम को तुम सत्यम शिवम सुंदरम के कितने करीब से हो गए। सबको पहचान करके भी मुझे पहचानने से इनकार क्यों? शायद इसीलिए ना, सारी उपमाओं को तोड़कर, तुम्हारे झूठे उपनामों को छोड़कर, तुमको केवल मैंने एक निश्चल सादा सा मनुष्य का नाम दिया था।
कवि सम्मेलन अब समापन की ओर है और कवि सम्मेलन के प्रारंभ में मैंने एक अध्याय जोड़ने की बात की थी। धरोहर प्रकल्प के अंतर्गत सर्वप्रथम पंडित नरेंद्र शर्मा को इस अध्याय में हम नामांकित करते हैं और उनके विषय में मैं थोड़ा बताना चाहूंगी कि यदि मैं पंडित नरेंद्र शर्मा जी का परिचय दूं तो हृदय के कोमलतम भाव बिंदु से प्रारंभ करूंगी तो आप सबको स्वयं आश्चर्य होगा कि वे तो पहले से ही गीत बनकर आपके पास हैं। जीवन के कोमलतम क्षणों में, दुख के अतिरेक में उनके गीत हमारा सहारा बन चुके हैं। हम आप सब गुनगुना चुके हैं, सुन चुके हैं, सुरैया का गाना, मनमोर हुआ मतवाला, नैन दीवाने एक नहीं माने, सत्यम शिवम सुंदरम और ज्योति कलश छलके आदि सभी के मनमोर को नचा चुके हैं। नरेंद्र शर्मा जी एक साहित्यिक योगी हैं। श्री शर्मा जी की अमर रचनाओं के अमर लेखक होने का श्रेय उनके अमृतपूर्ण भावों को, गीत को और जो समाज को उन्होंने एक स्वस्थ लेखन से एक काव्यमय और भावनात्मक परिवेश दिया, उससे वो सदा याद किए जाएंगे। अमर रचनाओं के अमर लेखक इसीलिए अमृतपूर्ण भावों के गीत समाज को दिए जो काल की पकड़ से परे हैं। महाभारत सीरियल से हर भारतवासी परिचित है। जब महाभारत सीरियल आने का समय होता था तो सड़कों पर ट्रैफिक भी कम हो जाता था, ये उनकी लोकप्रियता का प्रमाण है। महाभारत प्रणाली का सारा मार्ग निर्देशन श्री नरेंद्र शर्मा जी ने ही किया है। वे आकाशवाणी से जुड़े रहे और विविध भारती का नामकरण व रूपरेखा भी उन्होंने ही बनाई थी। 19 काव्य संकलन और 2 गद्य लेखन उनकी देन है। प्रसिद्ध काव्य संग्रह प्रवासी के गीत हैं। उनके साहित्यिक वातावरण को संबल और ऊर्जा देने वाले उस समय के मूर्धन्य कविगण श्री निराला जी, श्री सुमित्रानंदन पंत व श्री बच्चन जी रहे हैं। पंडित नरेंद्र शर्मा जी का जन्म 27 फरवरी 1913 को ग्राम जहांगीरपुर तहसील खुर्जा उत्तर प्रदेश भारत में हुआ और महाप्रयाण 11 फरवरी 1989 को हुआ। यह एक बहुत ही अनुपम संयोग कहिए कि उन्हीं की बेटी लावण्या शाह जी अमेरिका में हैं और पंडित श्री नरेंद्र शर्मा जी की रचना वे ही पढ़ रहे हैं। सुनिए लावण्या शाह जी से उनकी रचना रथवान।
ये मेरे पिताजी पंडित नरेंद्र शर्मा की कविता है रथवान। हम रथवान ब्याहली रथ में, रोको मत पथ में, हमें तुम रोको मत पथ में। माना हम साथी जीवन के, पर तुम तन के हो हम मन के। हरि समरथ में नहीं तुम्हारी गति है मन मथ में, हमें तुम रोको मत पथ में। हम हरि की धन के रथवाहक, तुम तस्कर पर धन के गाहक। हम हैं परमारथ पथगामी, तुम रथ स्वारथ में, हमें तुम रोको मत पथ में, हमें तुम रोको मत पथ में। दूर पिया अति आतुर दुल्हिन, हमसे तुम उलझो मत इस क्षण। अरथन कुछ भी हाथ लगेगा ऐसे अनरथ में, हमें तुम रोको मत पथ में, हमें तुम रोको मत पथ में। अनधिकार कर जतन थके तुम, छाया भी पर छू न सके तुम। सदा स्वरूपा एक सदृश वह पथ के इति अथ में, हमें तुम रोको मत पथ में, हमें तुम रोको मत पथ में। शशिमुख पर घूंघट पट झीना, चितवन दिव्य स्वप्न लवलीना। दरस आस में बिंधा हुआ मन मोती है नथ में, हमें तुम रोको मत पथ में। हम रथवान ब्याहली रथ में, हमें तुम रोको मत पथ में, हमें तुम रोको मत पथ में। धन्यवाद।
इन्हीं विचारों के साथ कवि सम्मेलन के समापन की ओर चलते हैं और आपके विचारों की प्रतीक्षा रहेगी। इन सभी प्रबुद्ध श्रोताओं को मेरा पुनि पुनि नमन। धन्यवाद।
कविता कहानी बाल रचना गीत संगीत सुनने के लिए लॉग ऑन करें हिंदयुग्म.com।